ओम शांति। आज 18 अध्याय समाप्त हुआ, तो समाप्ति में क्या करना है? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। जब नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो कोई भी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो संगम युग, बाबा कहते हैं ये संगम युग है। कौन सा संगम युग है? पुरुषोत्तम बनने का, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो इस युग का कितना बड़ा महत्व है, एक का पदम गुणा प्राप्ति। इस समय बाबा रहम दिल है, कितनी रहम करते हैं, ये सब कुछ माफ कर देता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप की छत्र छाया में रहो, बस सब बोझ बाबा को दे दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितना बाबा बच्चों को प्यार करते हैं, कितनी बाबा की मदद मिलती है, तो ये मदद का अनुभव सदा रहे, सदा ये अनुभव करे कि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो असंभव हो। यज्ञ के कितने बड़े बड़े कार्य हुए, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन कैसे हुआ? असंभव संभव हो गया। क्यों? एक बल एक भरोसा। जब हमारे जीवन में एक बल एक भरोसा, एक नामी एका नामी, दादियां जितना ही फराक दिल उतना ही एक नामी रही और एका नामी रही, लुटाने में भी एकदम पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार। और एका नामी माना कितनी एका नामी, पेस्ट को थोड़ा सा भी रह जाता था तो दादी कहती थी इसको थोड़ा बेलन लगा के ले आओ, बताओ, माना थोड़ा सा भी वेस्ट न जाए, इतनी एका नामी। और देने में सब कुछ अपना जो भी है, अपने पास जो भी है वो सब कुछ दे देते, अपना शाल भी दे देंगे, अपना स्वेटर भी दे देंगे, अपना चप्पल भी दे देंगे, सब कुछ हमारे पास है, आगे है कि नहीं है वो सोचते भी नहीं, इतना फराक दिल। तो ऐसा फराक दिल कब बने? जब ये रहा कि बाबा मेरा साथी है, सब कुछ वो करण करावनहार है, अपने को क्या समझा, कठपुतलिया समझा कि वो कराने वाला है, हम तो सिर्फ निमित हैं। कभी अपने को इंचार्ज नहीं समझा, कभी कोई अपने पर बोझ नहीं समझा, लेकिन सदा ही ये समझा कि बाबा साथी है, बस बाबा ही करण करावनहार है। ऐसी परिस्थिति, बीमारी भी कैसी भी बीमारी आई, लेकिन बीमारी में कभी ये नहीं कहा कि आज तकलीफ है, आज ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं, बस सदा यही रहा बाबा साथ है, बस कैसी भी तकलीफ हो, लेकिन कुछ भी पूछो, कैसे हो दादी जी, तो बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पूछा भाई तकलीफ है, तो बोला कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, देखो कैसी स्थिति, उपराम स्थिति रही, शरीर से डिटैच की स्थिति रही। और शरीर से डिटैच रहने की स्थिति कब आई, कितना समय का अभ्यास जीवन में रहा, तो वो स्थिति बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में वो स्थिति काम करती है। जब हमारी स्थिति ऐसी ऊंची बन जाती है तो परिस्थिति हमारे लिए कुछ भी नहीं है, परिस्थिति है ही नहीं। जब परिस्थिति को सोचते हैं तभी परिस्थिति लगती, लेकिन हम परिस्थिति को सोचे ही नहीं। कभी बड़ी दादियों ने, कभी जो बड़े बहनें हैं, कभी उन लोगों ने सोचा भी नहीं कि कोई परिस्थिति है। परिस्थिति है क्या, है ही नहीं कुछ भी। इतना परिस्थिति के बारे में जैसे कि ज्ञान ही नहीं है, ऐसी उपराम स्थिति। जब ऐसी उपराम स्थिति बनती है तभी हमें बाबा का वो साथ, वो सहयोग मिलता ही रहता है। बाबा बंधा हुआ है, बाबा बच्चों के सदा साथ है। बच्चों को फिक्र नहीं है, लेकिन बाप को हमेशा फिक्र रहता है बच्चों की। ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा नहीं, जब समर्पित हुए तो फिर कभी सोचा कि कल क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। क्यों, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि किसने कराया, मैंने तो किया ही नहीं। वो करण करावनहार वही है, यज्ञ किसका है, शिव बाबा का है, बाबा का है, भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। बस इतना निश्चय, अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय है तो सफलता होए नहीं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिश्चति। निश्चय जैसे कि कूट कूट के भरा हुआ है, कभी भी कोई भी बात में संकल्प मात्र भी निश्चय में कमी नहीं आई। जैसे कि स्वरूप बने हुए हैं, कोई भी बात के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रही। संपूर्ण स्थिति कर्मातीत स्थिति, जैसे बनी बनाई स्थिति, अपने असली स्वरूप में स्थित रहे। असली स्वरूप हमारा कौन सा है? वही ज्ञान स्वरूप। अपना ज्ञान स्वरूप माना एकदम सागर की तरह लहराते हैं, कभी पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर इसके बाद क्या पॉइंट आएगी, अपने आप आती रहेगी। क्योंकि कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है, डायरेक्ट सागर के साथ कनेक्शन है, तो उसको फिक्र रहती है कि भाई इसके बाद क्या है उसको देना है। तो ऐसा अनुभव स्वरूप बनना है ना, पॉइंट पॉइंट का सोचना ही नहीं है। क्योंकि पॉइंट का अर्थ क्या है, स्वरूप बनना। अगर पॉइंट ही सोचते रहेंगे तो स्वरूप बनेंगे नहीं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, कि स्वरूप बनना। वो भी कैसा स्वरूप, बाप समान। कर्माति स्थिति, दादी ने बोला ना ये झंझट कब छूटेगी, तो बाबा ने कहा ये अगर कर्मातीत बन जाएगी तो फिर तो सूक्ष्म वतन में चले जाएगी, यही रह के सेवा करनी है। देखो तुम्हारी बीमारी में भी सेवा हो रही है, देखो, लेकिन वो स्थिति है तो वही स्थिति काम करती है। यज्ञ योगी यज्ञ में से योगी को कभी भी संकल्प नहीं आना चाहिए शरीर छोड़ देगा, ये वो तो पहले मरे हुए हैं इसलिए मरने की जरूरत ही नहीं है। संकल्प उसको आएगा, संकल्प उसको आएगा जो कि भाई क्या होगा कैसे होगा, उसको संकल्प आता है। तो संकल्प से भी ऊपर रहते हैं, तो संकल्प ऊपर वाला करता है उसके लिए क्या करना है, उसको कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति हो हमारी। लक्ष्मी जी कभी सोचती नहीं कि अभी आगे खत्म हो जाएगा क्या करें, देती रहती देती रहती, अपने आप निकलता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन से हमारी लाइफ से सबको अनुभव हो, निरंतर निरंतर कुछ न कुछ हरेक को मिलता रहे। कब मिलेगा, जब अपने अंदर भरा हुआ होगा तभी सबको मिलता रहेगा। ताकि वो स्थिति वो कर्मातीत स्थिति वो संपूर्ण स्थिति का हम आह्वान करें कि हम ही आदि अनादि स्वरूप जो हमारा है। आदि स्वरूप कौन सा है हमारा, देवता स्वरूप, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। एक एक गुण का वो स्वरूप बने, सर्व गुण, कोई भी ऐसा गुण नहीं हो जो कम हो, क्योंकि हर एक गुण का लिंक बना हुआ है। ऐसा गुण कोई नहीं है जो इसके साथ दूसरा गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ही गुण लेना है तो उसमें अगर आप मास्टरी करेंगे तो उसके साथ साथ हर गुण हर प्राप्तियां है, क्योंकि जो संपन्न है कहते हैं 16 कला संपूर्ण, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता कि इसमें कौन सी कमी है, कौन सा उसमें गुण, कौन सी शक्ति, कौन सी विशेषता का अभ्यास करना है। अभ्यास से भी ऊपर की स्थिति रहती है। अभ्यास किसको करना पड़ता है, जिसको कमी है उसको अभ्यास करना पड़ता है, जो है ही भरपूर तो उसको क्या अभ्यास करने की जरूरत है। तो संपूर्ण स्थिति का जिसको अभ्यास है, संपूर्ण स्थिति ही संपूर्ण स्थिति ही दिखाई देती है तो वो तो अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है उसको। बस सामने लक्ष्य यही रखना कि मेरी स्थिति कौन सी है, बस सामने दिखाई दे फरिश्ता स्वरूप, सामने दिखाई दे कर्मातीत माना जो बिंदु स्वरूप, बस वो बिंदु है मैं भी बिंदु, वो जैसा है वैसा मैं हूं बस। इस अभ्यास में सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा अभ्यास ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमें। तो बाबा ने आज 3 स्वरूप बताए, कौन से 3 स्वरूप आप बताएंगे। पहला स्वरूप है ज्ञानी तू आत्मा, और दूसरा है योगी तू आत्मा है, और तीसरा ज्ञानी तू। हम कहते हैं अभी हम क्या कहते हैं, हम कौन है, ज्ञानी तू आत्मा है। अज्ञानी अपने को कहना अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को भी कहते हैं हम ज्ञानी हैं, और दूसरे कौन है, अज्ञानी है। माने ज्ञानी तू आत्मा में क्या है, समझदार। कौन सी समझ है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको उसकी समझ नहीं है, उसको ही कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। और योगी तू आत्मा माना, योगी माना जिसके पास कोई भी वियोग की बात है ही नहीं, सदा ही वो कहते ना वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, मस्त फकीर है वो, माना अपनी मस्ती में रहते हैं। कहते चाहे बस्ती में आग लगे कुछ भी होए, लेकिन वो रहे अपनी मस्ती में। कौन सी मस्ती है? अपनी संपूर्ण स्थिति की, अपनी कर्मातीत स्थिति की, अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल स्टेज है, उसकी मस्ती, उसका अनुभव, उसमें जो रहते हैं, उसको ही योगी तू आत्मा कहते हैं। योगी तू आत्मा माना बाप समान स्थिति है। ब्रह्मा बाबा को कभी भी ये नहीं रहता था कि मैं ज्ञानी हूं योगी हूं, लेकिन वो हमेशा वो अपने स्वरूप की स्थिति में रहे। बस मेरा वो संपूर्ण स्वरूप ऊपर है, वही मुझे संपूर्ण स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना है। कैसे? थोड़े समय के अंदर उस कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य कितना पावरफुल रहा, लक्ष्य के साथ साथ ही क्या आते हैं? लक्षण आते हैं। तो हर कार्य करते हुए, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी उपराम स्थिति रही, बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बिन कोड़ी बादशाह। हम लोग भी कहां भी जाते हैं तो कोई फिक्र नहीं रहती, क्यों? पैसा है कि नहीं जेब में, लेकिन होता ही नहीं पैसा जेब में। तो कभी कहां भी जाते हैं तो कैसे आए भाई, यहां से गाड़ी खाली जा रही थी उसमें आ गए, वहां से गाड़ी खाली आ रही थी उसमें आ गए। देखो लोगों के पास तो, अभी तो मैं गया था तो पर्स ही जेब में नहीं था, पर्स ही भूल गया यहाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो कैसे, एक पैसा भी जेब में नहीं, फिर भी कितना दिन की, 15 दिन की सफर किया। बाहर वालों को तो कितनी फिक्र रहती है भाई, एटीएम कार्ड भी चाहिए, आगे बैलेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना बेफिक्र किसे बनाया? क्योंकि हम अपने को क्या समझते हैं? हम बादशाह है। कैसा बादशाह? बेफिक्र बादशाह। फिक्र किसको रहती है? बाबा को हमारी फिक्र रहती है कि इसका आगे क्या होगा, खाना उसको हम जाते हैं भाई चिट्ठी भी नहीं लाए, अभी तो पूछते हैं, सेंटर में समर्पित होते तो भी पूछते हैं भाई चिट्ठी लाए भाई, ये तो याद नहीं रहा चिट्ठी, चलो कोई बात नहीं आ जाओ आ जाओ। माना जब हम बेफिक्र रहते हैं तो बाबा हमारी फिक्रात सब, हमारे बोझ बाबा हमारा बोझ ले लेता है। जब हमें फिक्र रहती है तो बाबा हमारा बोझ कैसे लेंगे? तो हमारी ऐसी स्थिति रहे, उपराम स्थिति रहे, बेफिक्र, केयरलेस माना बे, लापरवाही तो अटेंशन की कमी है। इसलिए दादी कहती थी कि अटेंशन की, टेंशन की आगे क्या लगा दो, ये लगा दो तो अटेंशन। लेकिन हमारा तो सिर्फ हमें एक ही चिंता रहती है, एक ही चिंता, चिंता वो भी सुखमयी, वो भी शांतिमयी, खुशीमयी, वही चिंता है। बस बाबा मेरे साथ है, एक ही चिंता सब चिंताओं को मिटाने वाली चिंता है, एक ही फिक्र सब फिक्रात से फारिग बनाने वाली चिंता है, एक ही चिंता बस। देखो बाबा ने कोई भी चिंता नहीं की, सदा ही बेफिक्र रहा, बादशाही जीवन। कितने लोग कितना बाबा के प्रति विरोध, कितना, लेकिन बाबा कैसी स्थिति रही, कितना उपराम स्थिति, बेफिक्र, सब कुछ बाबा के हवाले कर दो तो वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपना बैलेंस रखने के चक्कर में रहते हैं तो वो फिर हमारी फिक्र नहीं रखते। हमें बैलेंस रखना है तो किसी लिए रखते हैं भाई, सेवा के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, तो वो सब अपना काम करता है भाई। कहीं जाते हैं तो भाई जरूर पड़ती है तो फिर चलो अपने पास है तो सेवा में लगा दो, ये अर्थ रहता है। लेकिन अपने लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए ये फिक्र रखते हैं तो बाबा फिर कहते हैं कि भाई चलो करो तुम करो। लेकिन हमारा जीवन ऐसा उपराम स्थिति वाला हो, एक बल एक भरोसा। तो आज की मुरली का सार क्या है? बाबा के साथ रहो और सहज योगी जीवन, मेहनत वाला जीवन नहीं, क्या करे क्या कैसे करे नहीं, सहज योगी, रमता योगी, मस्त फकीर। तो थोड़ा योग का अभ्यास भी करेंगे, थोड़ा आज की मुरली के ऊपर चालू कर दो, थोड़ा कुछ समाना। लेकिन बाप के गुणों को समाना है, बाप की शक्तियों को समाना है। वो तो रखते हैं, हम भी रखते हैं बैंक बैलेंस, लेकिन वो किसी लिए रखते हैं कि सेवा के लिए रखते हैं। आज सब कुछ दे दो उसके बाद फिर लेने जाओ थोड़ी मिलता है, इसलिए। लेकिन वो सेवा के लिए, स्वयं की सेवा तो माना जो बाबा का ये रथ है, शरीर है, उसको भी संभालना है। पहले तो हम कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर जब तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप सेवा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। शरीर ही तकलीफ देता रहेगा तो आप क्या करेंगे, योग नहीं कर सकते। पहले शरीर तंदुरुस्त रहने का आधार क्या है? अनाज को कम कर दो माना जो टेंशन वाली चीजें है, बोझ वाली चीजें, उसको कम कर दो, बेफिक्र हो जाओ। शरीर का बोझ लगता कब है, भारीपन क्यों लगता है शरीर? जब भारी चीजें अंदर जाती है तो भारी लगता है। आप ऐसी चीज हल्की लो जो शरीर भी हल्का रहे, मन भी हल्का रहे। तो ऐसी चीजों का अभ्यास, एक टमेटा है, ककड़ी है, गाजर है, ये सब चीजें तो नेचुरल मिलती रहती है। हमें कोई फिक्र नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है। कि क्या ध्यान रखना है? कोई भी ऐसी चीज न हो जो भारीपन हो, सदा ही बाबा के आभारी रहे, बस तो भारीपन सब समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, चलो कमेंट थोड़ा। तो ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग का सुहावना समय एक मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सर्वशक्तिमान बाप दादा की, छत्र छाया, इस छत्र छाया में अपार शांति है। छत्र छाया बेफिक्र बादशाह बना देती है। छत्र छाया संपूर्णता का अभ्यास कराती है। हमारा वो संपूर्ण स्वरूप हमारा वो अनादि स्वरूप ज्ञान स्वरूप हर बात का, हर समस्या का समाधान स्वतः है, सहज है, क्योंकि छत्र छाया में पवित्रता स्वरूप हमारा वो अनादि स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। इस स्वरूप में संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद की स्थिति, संपूर्णता हमारे साथ कंबाइंड है। वो मेरा ही ओरिजिनल स्वरूप संपूर्ण है। संपूर्णता कि वो पराकाष्ठा है कि दूसरों को शांति खुशी आनंद प्रेम शक्ति सहानुभूति सारे विश्व की आत्माओं को सहज ही मिलती है। हे मेरे इष्ट देव, इष्ट देव को पुकारते ही अपने अंदर वो खुशी, वो निश्चिंतता, वो बेफिक्र का जीवन, दुख का जीवन भूल जाता है और एक आनंदमय स्थिति का, एक खुशी अतीन्द्रिय सुख की वो अनुभूति होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति कर्मातीत स्थिति शरीर में रहते भी शरीर के भान से प्राण अपने अनादि स्वरूप पाप के साथ निराकार बाप के साथ ज्योति स्वरूप स्थिति वो भी ज्योति स्वरूप शिव बाबा है। मैं भी ज्योति स्वरूप परम धाम में दोनों ही जैसे कंबाइन है उस महान स्थिति का उस संपूर्ण स्थिति का वो पावरफुल स्थिति का अनुभव में खो जाए मैं कहा और ज्योति स्वरूप स्थिति मेरा कहा माना मेरा बाबा मेरे साथ है मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा बस यही धुन 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 लगन वो लगन वो खुशी प्रवाहित हो रही वो खुशी सबको खुशनुमा बना रही ऐसा खुशनुमा जीवन पुरुषोत्तम संगम युग यही श्रेष्ठ घड़ी है। एक का पदम गुणा प्राप्ति का यही बेफिकर जीवन है यही सब बोझ उतारने का घड़ी है यही आनंद की स्थिति है यही मलाई मस्ती है जीवन है तो यही है यही है।